जश्यानं मदर कुंडल चारु कर्णं राजन बबोल सुभगं सकला सहासं निजोत्तमं प्रतिकूल तिथिभिर पिबंत नरो नरश्च मुदिता कुपिता निमिष्य सुखदेव गोस्वामी जी बढ़ा जब कृष्ण का कृष्ण के अवतार की बात कर रहे थे कृष्ण अवतार सब जितना जैविक वंश बोध वंश और जितने भी वंश हैं सूर्य वंश चंद्र वंश सबका वर्णन कर दिया है। वर्णन करके तब फिर ये बतला रहे हैं वसुदेव जी की बहुत सी पत्नियां थी सूर्यवंश के लड़के हुए तो जिनकी कितनी पत्नियां थी कितना थी मैंने एक ही की तो नौ कन्याएं थी किसकी देवक की देवक की नौ कन्याएं या दस कन्याएं वो सबकी शादी में से थी और रुक्मिणी जी रोहिणी जी दूसरे से थी दूसरे किसी राजा की लड़की और भी इनकी बहुत सी पत्नियां भागवत ने दशम नौ स्कंधों का नाम दिया एक एक स्त्रियों से कौन कितने पुत्रिये कितनी कन्याएं हैं और किस प्रकार से उनका वंश बढ़ा किस प्रकार ये सब वर्णन करते हम तो देवकी जी के आठ पुत्र और कन्या कन्या कौन सुभद्रा का वर्णन आठ पुत्रों का तो जन्म कहाँ हुआ मथुरा में और सुभद्रा का जन्म कहाँ हुआ यहाँ मथुरा में हुआ या द्वारका में मथुरा में हुआ कृष्ण के जन्म के बाद फिर उसका वर्णन करके फिर वो कृष्ण का बोल लेते हैं कि ये कृष्ण कौन है जो उनके अष्टम गर्भ से निकले अष्टम गर्भ का जो कृष्ण जो हुए वो हुए तो जन्म उनका मथुरा में और यशोदा की गोदी में लालित पाल ऐसा बतला है इसलिए बतला रहे परीक्षित महाराज जी को कुछ करने कारण ये जो सुभद्रा जी थी वो तुम्हारी कौन थी सुभद्रा जी की का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी से ये पैदा हुए हैं उत्तरा के गर्भ से ये पैदा तो इनकी कौन लगी दादी लगेगी दादी इसलिए वो दिखला रही है ये भाई और बहन थे और उन्हीं से ये तुम आए हो इसलिए उनसे ये नहीं कहा जैसे ये यशोदा जी के लड़के तो फिर कुछ गड़बड़ी होगी किंतु जब भावाविष्ट में हो जाएंगे तब तो अपने आप निकल जाता है वो तो आगे निकल करके आएगा कब आएगा तब दशम स्कंध की लीला का पंडा वर्णन है तब उनसे रहा ही नहीं जाएगा तो जो परिस्थिति जो वास्तविक बात है वो सब आपने आप प्रकट होगी उस समय कह देंगे नखल गोपी का नंदनु है और पशुपानु गजाय देवकी जन्म बाद और भी कितनी कितनी उसमें इस तरह से जो सुधा जी के लड़के हैं पीछे वो व्यक्त करेंगे जबकि एकदम राह मिल जाएगा और अभी तक तो वो समाज में बातचीत कर रहे हैं इसलिए वो बता रहे हैं अरे तुम्हारी वो दादी थी विनोद सौभद्रा वो कृष्ण की बहन थी और अर्जुन के वो सखा था अर्जुन की वो पत्नी थी और उससे परिचित अभिमन्यु और उस अभिमन्यु से तुम साधारण नहीं है ये बता रहे थे उनको प्रसन्न करने कथावाचक श्रोता को प्रसन्न करना चाहता ऐसी ऐसी मधुर बातें कहेगा तो साहब श्रोता लोग होकर के सुने इसलिए उनको प्रसन्न कर रहे हैं और व्यक्ति भी निकट है ना किसी तरह से एक स्वरूप में उनकी चित्त निकाल दिया इसलिए उनको प्रार्थना तो जस्या अनंत क्या बतला रहा तो उस समय की ये बात कृष्ण का लीला के वर्णन करते 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 सुखदेव गोस्वामी जी ये उसका वर्णन कृष्ण का जस्यानं मकरं चारु कर्ण भाज कपो ऋषुभवन सविदासहासन नित्योत्सवम न प्राप्तु ऋषि भी केवल क्या नारियो नाराष्ट्र कुपिता मुदिता कुपिता ऐसा सुंदर उपकरण किया अब तो समय हो गया साल नहीं तक रहने में अगले कल इसका हम जो तात्पर्य है मैंने यही समझ रखो जगत में उपास्य सर्वोत्तम उपास्य कृष्ण वो भी उपास्य सर्वोत्तम नहीं है जब तक कि श्रीमती राधिका जी और उनकी सखियां परिकर और सखा लोग उनके परिकर मैया यशोदा इत्यादि से संबंधित और ग्रह से संबंधित न वही कृष्ण भले ही जब द्वारका में चले जाए और वहां रुक्मिणी सप्तभामा और द्वारका इत्यादि के जो सखाओ से परिवेश वो सर्वोत्तम आराध्य है गोलोक में रहने वाले भी आराध्य सर्वोत्तम ये व्रत के रहने वाले ये कृष्ण ये भी सर्वोत्तम आराध्य है उन्हीं कार्य में भजन करना चाहिए और किस रूप में भजन करना चाहिए जैसे को तीन इसके अतिरिक्त इससे बढ़कर चाहिए
भक्त्यादिना परार्थलक्ष्यै चित्तस्य कामादिपरङ्गमध्यै श्रीकामयं त्वां सर्वं प्रसन्नां वन्दे भवते चरणं गुरवे गोप्रसङ्गाय राधिकारे सकारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्तायं सैवास्मि सदैवास्मि स्वस्थता साधन क्षत्रिय स्तर का साधन भाव और सामने पर कभी कभी भगवान के रूप की झलक आती है नकुल में ठाकुर जी ने भी जब श्रद्धा के बाद में गुरु पद आश्रय होता है और श्रवण कीर्तन होते हैं उन्हें लगता है तो क्रमश जितने प्रकार के अनर्थ हैं वो सब लोग अनर्थ जितने परिमाण में दूर होंगे भक्ति भी उतनी परिमाण में उन्हें छोटी की छोटी से भक्ति की एक ही अवस्था है जिसको उत्तमा भक्ति परिमा भक्ति जब इंद्रियों से उसका साधन किया जाता है तो साधक के स्टेज के अनुसार उस भक्ति को समकामा भक्ति सगुना भक्ति निर्गुणा भक्ति इसके बाद में कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा इत्यादि का भक्ति में यथार्थता में शुद्ध एक ही है जो करता है उसके हृदय के अनुसार में उस भक्ति का नाम जिसको हृदय करने में अभी कामनाएं वासनाएं हैं तो सगुना भक्ति अथवा सकाम भक्ति कोई एकदम कामना वासना दूर हो गई उस निर्गुणा कहते हैं अब ये कामना वासना तो दूर हो गई किंतु अभी शुद्ध भक्ति नहीं आई और जब वही भक्ति जब आने लग जाएगी तो धीरे धीरे निर्गुण के बाद वो कुछ भवावस्था अवस्था के बाद में प्रेमावस्था ऐसी बढ़ती तो भजन करते 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 जब भावावस्था में सब प्रकार के अनर्थ जब विदृत हो जाते हैं बस एक कृष्ण की चिंता हो जाती है वो तो भगवान के और उनके भक्तों का स्मरण करता है उनकी लीलाओं का स्मरण करता है लीलाओं का स्मरण करते समय कभी कभी झलक के रूप में भगवान का दर्शन करता है जैसे बिंदु मंदिर जब उन्होंने दोनों आंखों को खोल दिया खोल देने के बाद में जबकि हाथ कृष्ण कह करके चलने लगे एक बालक आ गया और उनकी लटकिया पकड़ लिया बाबा कहाँ जाओगे उन्होंने बताया कि मैं वृंदावन जाऊंगा अरे बाबा मैं भी तो वृंदावन जाऊँ तो ठीक है हमारा हमारी लटकिया पकड़ लेगा कहाँ जरूर पकड़ लेगा चलो बाबा तुमको गान आता है गान गाता है हमको गान बहुत पसंद है चलते चलते हमको कोई गान सुनाओ मैं तुम्हारी लक्ष्य पकड़ सकता और नहीं सुनाएगा तो हम नहीं लेते तो से जानते हैं, ऐसे जानते हैं उनकी गुरु कौन है, उनका मन और कृष्ण की लीला चैत्रों का वो दान करने वाला। वैसे ही उनका भी बड़ा सुंदर स्तर गले का कंठ भी, और वैसे ही चढ़ाव उतराव के साथ में स्वर के साथ में, तो उन्हीं श्लोकों का जो कि उनको दर्शन हो रहे हैं, तो उन्हीं श्लोकों का भावों को श्लोकबद्ध होकर के वाल्मीकि की झांकी में अपने आप रखना हो रही है, कोई प्रयास नहीं करना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जब चैतन्य के सामुख लिखते हैं तो उनके अंदर में भावों का फ्लो आता है, लहर आता है, और अपने आप वो बनता चला जाता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक लिख रहे हैं एक शब्द और शब्दकोश को जो है हम लोग जैसे, और फिर उसको लेकर के फिर उसको काल में किया खाता पीता और फिर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने गुरु जी को देखा, जो प्रबंध लिखते हैं तो उनका प्रबंध अंत में आरंभ होता है और अंत में शेष होता है, बीच में उसको देखने की कोई शास्त्र देखने की कोई चीज होती, ऐसे उनका फ्लो आता है। और कृष्ण का वो दर्शन करते हैं, जब दर्शन करते हैं तो आनंद के साथ में ऐसे श्लोकों को लेते हैं, जब गिरता होता है तो गिरता वो भाव आ जाता है तब उसको। जैसे व्यास जी ने कहा है, जब मैंने कृष्ण की लीला को देखा, जैसा वाई श्री नारायण कृष्ण परम पुरुष, हमने इसको देखा और देख करके उनको लीला चक्रों को अपने आप संगबद्ध होता गया, मैं इसको ऐसे उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करके बसिन्नाथ ठाकुर जी कहते हैं जुगाई चंद निशी चक्षुषा प्राप्त दुषाई सुनना जगत है वो भी नहीं गति रखने, वो किसी दूसरे की बात नहीं लिखते, अपनी बीती बात लिखते हैं। भजन करते 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 मैंने देखा एक सुंदर वो वाले का लड़का बांसुरी बजाता हुआ त्रिभंग रूप से हमारे सामने खड़ा हो गया, मैं इसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा और न जाने कहाँ वो छिप गया। सुन्न धरातल चौद के देखी, याद है पहले से याद था हम लोग ये सब कितनों को याद करो,
गाय ने गोविंद नाम उपजिल भगवत ग्राम ग्राम गुणा भगवान ने हम नटोवर रंगे पंखे भी कर।
इसके बाद में देखा भी नहीं, बस आंखों से आंसू की धारा गिरने लगे, हाय करते 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 गिरने लगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन का एक, ये जय धर्म में जो कुछ लिखा है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहाँ से लिखा है, अपनी अनुभूतियों को महापुरुषों का ये लिखा है, इसलिए उपन्यास नहीं है, केवल अनुभूतियां हैं उनको जो देखा वैसे। तो ऐसे ही भाव अवस्था में कृष्ण की एक झलक दर्शन दिखा जला कभी कभी होता है और उसकी स्मृति से वो सारा जीवन भर कभी तड़पता है, कभी आनंदित होता है, कभी कुछ, इसको कहते हैं स्फूर्ति। स्फूर्ति से ये स्फूर्ति कहीं साक्षात भी होती है और कहीं कहीं केवल स्फूर्ति होती है। साक्षात होने पर भी स्फूर्ति जैसा ये लगता है किंतु स्फूर्ति नहीं होती। कभी कभी सो रहे हैं नींद भी नहीं आ रही और उस समय में स्वप्न जैसा जो होता है वो स्वप्न नहीं, वो स्फूर्ति होती है, वो भगवान की व्यथा की बात किसको होगा। अनर्थ ग्रस्त दूर होने पर जो भावावस्था आने को होगा उस समय में ये चीज है, उसके पहले जो होता है वो कोई अधिक मूल्य नहीं है। कभी संसार की बातें आएंगी स्वप्न में, कभी जब वो हो जाएगा तब वो केवल कृष्ण होगी। दसम नौवे स्कंध में सूर्य वंश के और चंद्र वंश के समस्त राजाओं का वर्णन किया और वर्णन करने के बाद अंत में वसुदेव जी के यहाँ है, वसुदेव जी का लीला वंश इत्यादि बतलाने बताया कि इनकी बहुत सी स्त्रियाँ थी जिनमें देवकी की ही कितनी कहनी थी, देवक राजा की और उनकी सबसे छोटी शादी हुई और इसका जिसमें देवकी सबसे छोटी और इसका पुत्र और भी राजाओं की सामंतों की सुंदरी सुंदरी स्त्रियों से इनकी शादी हुई। कितने में 18 मैंने बहुत सीखी। उसमें ऐसी विवाह की प्रथा थी तो एक एक स्त्री से कितने कितने बच्चे उनको पैदा हुए और उनको उनसे लड़के उनका नाम देकर जब इनके अंतिम पुत्र आठवें पुत्र का देवकी का जो सबसे छोटी थी इसलिए अंत में बना तो उसके जो आठ पुत्र हुए उसमें 6 का पुत्रों का नाम बतलाया गया। 7वां हुए संतासन और ये हो गया कि इनका गर्भ ये इसलिए उसको बतलाया रोहिणी का पुत्र और अंतिम जो लड़की हुई उसका नाम सुभद्रा देवकी से। तो कृष्णा का लीला चरित्र वर्णन करते करते कहते हैं परीक्षित जी को प्रसन्न करने के लिए जैसे उनका चित्त लगे ये कृष्ण का जन्म हुआ पहले मथुरा में वसुदेव जी से और इसके बाद में उनका पालन पोषण यशोदा जी की गोदी में बड़े प्रेम के साथ प्रेम फिर कंस का डर समाप्त होने पर कंस को ही समाप्त करने के लिए युवा अवस्था में किशोर अवस्था में फिर लौट करके मथुरा आए और यहाँ पर कंस इत्यादि सत्ता निकली। फिर वो आते हैं युद्ध के लीला के कहते हैं कि कृष्ण का कैसा मनोहर जस्यान मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजक प्रपूर सुभगम सविदा सहा नेत्रोत्तम नक्त प्रपूर दृशिभी तिवंत्यो नारियो नाश्च मुदिता कुटिकया मनीष। कृष्ण को कुछ लोगों ने साधारण मनुष्य समझा किंतु ये साधारण मनुष्य नहीं और ये गोलोक बैकुंठ धाम से अपने इस रूप को इस जगत में अवतरित किया था योग माया के बल से। ये पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा तो ये जो कृष्ण थे आकर के अपनी योग माया से मनुष्यों के अनुरूप अपनी लीला को प्रकाश किया इसलिए ये लोग सहज ही कैसे आदमी आकृष्ट होता है रूप से जितना ही सुंदर रूप होगा तो विशेष करके पुरुष और स्त्री का इस रूप में बनाया है उसी की उस जगत की ये छाया है वहां पर पुरुष एकमात्र कृष्ण है और बाकी सब लोग प्रकृति हैं उनके पुत्र हैं। अब उसी जगत का ये विद्युत प्रतिफलन इस जगत में ये पुरुष स्त्री और सब चीजें हैं तो ये रूप से आदमी आकर्षित होता है होता तो मैं इतना सुंदर रूप लेकर के जाऊं ये जगत के जितने रूप के उपासक हैं वो सब हमारे रूप को देखकर के आकर्षित हों बस उनकी माया भी दूर हो जाएगी और वो नहीं पाता है। लोग गुणों से प्रसन्न होते हैं तो इतना सुंदर मैं गुण प्रसन्न किए बनाऊंगा जो संसार में ऐसा गुण नहीं है इतना बली होऊंगा जो हमारे समान कोई बली नहीं है इससे लोग आकर्षित होंगे और प्रीति से होते हैं परस्पर ऐसी कृति दिखलाने ये जगत में आज तक किसी भगवत अवतार में भी नहीं हुआ इसलिए जगत में वो अवतीर्ण होकर के पहले यहाँ पर रूप का वर्णन कर रहे हैं फिर उनकी लीला कथाओं का वर्णन कर रहे हैं क्रमशः सिद्धों के लिए ये तो सिद्ध भाव है किंतु साधकों के लिए ये इसी भावों को इसी रूप का चिंतन स्मरण हृदय में लाएंगे जैसे साधारण साधकों के लिए यह बतलाया गया शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम इत्यादि बतलाया भगवान कारणदारी में शयन किए हुए शेष के ऊपर शांताकार सब तरफ में केवल शांत बात जल के अतिरिक्त और कुछ है नहीं वहां पर कोई समुद्र में तरंग भी नहीं कोई तरंग नहीं क्योंकि कुछ रहेगा हवा इत्यादि तो वहां पर त्रिगुण साम्य अवस्था है और वहां पर लक्ष्मी जी उनके चरणों को छोड़े तो पद्मनाभम और उनके यहां से
ऊपर में ये ब्रह्मा इत्यादि उनको कोई कुछ पता ही नहीं मालूम। सुरेशम जितने भी देवता हैं ब्रह्मा शंकर इत्यादि सबके ही पद्मनाभम सुरेशम और उनका ये सब ये शांतर के पास उपासकों का ये इस तरह से और भी अवतारों का ये सब वर्णन कृष्ण के लिए वर्णन और सब जगह में कस्तूरी तिलकम ललाट कैसे और इधर से कस्तूरी तिलकम बीच में कस्तूरी तिलकम ललाट कटले कस्तूरी कैसी कौस्तुभ मणि यदि इसको इच्छा किया कि कौस्तुभ मणि तो वो अपना सब रूप दिखा देती है। एक समय कृष्ण और श्रीमती जी बैठी उन्होंने कहा जी आज मैंने एक स्वप्न देखा कृष्ण जी क्या स्वप्न देखा मैंने स्वप्न देखा जैसे हम और आप बैठे हैं ऐसे ही हमने देखा कि जैसे वृंदावन में जमुना नदी बहती है चारों तरफ से और वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहती इधर से घूमते करते इसमें रहती बड़ी सुंदर कोई नदी है और उसमें वन उपवन सब उसमें मयूर भी नाच रहे हैं कोयल भी चुहा कर रही है और भंकुट हो रहे हैं करके पुष्पों से एकदम बहुत ही सुंदर प्रकृति ठीक वैसे ही वहां पर भी देखा और मैंने देखा जैसे हम और आप जैसे हैं वहां पर एक सुंदर किशोर ब्राह्मण को देखा किशोर ब्राह्मण बड़ा ही सुंदर उसको देखा जी वो कभी कभी करता है कृष्ण कृष्ण और कभी करता है हाराधे जब हाराधे हाराधे करता है जिस टोन में जिस भावना से उसमें मुझे ऐसा पते कहीं मैं ही तो नहीं हूं ये मेरे अस्तित्व ऐसा कोई कहता नहीं जब वो कहता है जबकि हे कृष्ण कृष्ण तब मुझे होता है कि मैं ही मेरे अस्तित्व ऐसा कोई एकदम उसे सामने और जब हाराधे हाराधे करता है तब मैं देखता हूं कि आप तो नहीं है आप ही ऐसा कर सकते हैं दूसरा करता है हमको उस समय कितने फन तो ये तो बड़ी विचित्र बात है कृष्ण ने कहा जिसका एक्शन ये बड़ी विचित्र बात तुमने देखी तो आज तक तो तुमने इतना सब कुछ देखा कभी भी तुम्हारा चित्र ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर तुम्हारा चित्र इस प्रकार से चित्त हो रहा है इसका कारण वो कौन है मुझे यही तो पता नहीं चल ये कौन है कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा हम और तुम दोनों हैं मैं इसी रूप से अब जाऊंगा गुप्त वृंदावन में श्वेत द्वीप में और तरह तरह की लीलाएं करेंगे और विश्व को रुलाएंगे अपने भी रोएंगे विश्व को भी रुलाएंगे हाँ तो कौस्तुभ मणि के लिए कहा तो उन्होंने कृष्ण ने क्या किया अपनी कौस्तुभ मणि जो यहाँ थी उसके तरफ में देखा और कुछ इच्छा की कौस्तुभ मणि में वही विप्रा उनकी कौस्तुभ मणि में आ गया और वो कौस्तुभ मणि इतनी बड़ी हो गई उसमें छवि ऐसी आई एकदम वो जितनी भी लीलाएं थी उसने महाप्रभु जी की लीला की गौर लीला की और वो जैसे नृत्य कर रहे हैं लोटपोट करें और अपने परिकरों के साथ पूरा रील जैसे होता है सिनेमा में ऐसे एकदम पूरा जैसे राधा जी बड़ी प्रसन्न हो गए मैं भी चलूंगी उन्होंने कहा चलो उन्होंने जहाँ वृंदावन नहीं है जहाँ जमुना जी नहीं है वहां पर मैं नहीं जाऊँ वहां पर गिरिराज जी होनी चाहिए वहां पर हमें सहेलियां होनी चाहिए सखा होनी चाहिए गाय होना चाहिए और यही धाम होना चाहिए तो उसने मिले करके नवदीप में प्रछन्न नाम से अप्रछन्न रूप से कस्तुभ मणि
यश्यानन मकर कुंडल चार करण पराज, तो साधक ये सब को दर्शन करता है। अब एक बार यदि दर्शन के तो जीवन भर उसको भूल नहीं सकेगा, उसका चित्त अपने आप उलट जाता है। और जिसका ऐसा नहीं होता, चित्त को निमिष्ट करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मैं कभी कभी वो सवेरे बैठ करके हरिनाम करता हूँ, यशोदा जी के दाम बंधन का लीला का स्मरण करना नहीं आया, और सब चीजें आ जाए, इधर उधर की संसार की बातें आएंगी जिससे हम अभी आज के जीवन में चिंतन करें। यदि मान ले कि इस पर थोड़ा सा एक थोड़ा सा आया, बाकी सब नहीं है, जोर जबरदस्ती करने पर भी लीला सुनी हुई है तभी नहीं चिंतन हो, नहीं है तो क्या ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप में सब है अपने आप एक के बाद माला की फूल के हार की भांति एक एक रूप, इसी का नाम है लीला चिंतन। ये अभी नहीं होगा, ये कब होगा? भजन करते करते अनर्थ दूर होने पर आसक्ति जलाने को होगी और कृष्ण लीला के प्रति लोभ होगा, तो ये संभव पर उन लोगों के लिए इस चीज का ध्यान। ये भी हम ध्यान करेंगे तो मंत्रमयी उपासना इसको कर, एक एक लीला का एक एक ध्यान, एक एक स्वरूप, जब यह खेल के रूप में जब होने लग जाएगा तो इसको कहते हैं स्वाभाविकी। श्रीमद् भागवत में इसीलिए बढ़े कृष्ण जाने के बाद में कृष्ण लीलाओं का चिंतन करके पढ़ करके भी चित्त थोड़ा सा भी निमित्त हो गया भगवान में, जन्म जन्म मान करके पाप अपराध दुर्दैव ये सब दूर हो करके धीरे 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 कृष्ण में चित्त लग जाए। चित्त नहीं लगता है तो भी बरबस लगाना चाहिए, परिणाम में रुचि नहीं हो रही, माला उठाते हैं थोड़ी देर के बाद में या तो नहीं जाती है या चित्त चंचल हो जाता है, नहीं लगता तो अभी करो। कृष्ण नाम सीता की विद्या पितो प्रताप का रचना न रोग कर वो किंतु आगरा अनुदिनम शादी भव तद्वद मूल हंत्री। हम लोग पहले आए ना तो ये सब कुछ याद किया, उपदेश अमृत मन शिक्षा याद करने से क्या होगा, जो कभी कभी जब ये स्मरण करेंगे तभी तो थोड़ा सा आ जाएगा, इसलिए इस चीजों को स्मरण करके चित्त भी इधर नहीं जाएगा और सब समय चित्त भी नहीं जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसी का पहले रूप चिंतन करें, तो कस्तूरी तिलकम ललाट पट ले दस्तक ले कौतुकम नागसाग्रे वर्म उत्तम, वर्मोत्तम करने से कितनी लीलाएं आती हैं, कृष्ण लीला की वर मुक्ति का कौन सा मुक्ति, ये संग नहीं को पढ़ना है वर मुक्ति का। करतले बेणु, करतले बेणु, करतले बेणु करे कंकणम सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम कंठेश्च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजय से ऐसे ही फुलिंदी वरकांतरिंदु बरहावतन संप्रिय श्रीवत्तांत मुदार कौस्तुभ धरण पीताम्बरम सुंदर गोपीनां नयनोत्पलाय अर्चितम गोसंधावकम गोविंदम कल्पेनुवादन परम दिव्यांगम। हरिनाम करते समय इस सब को करने के लिए, करने से मन इधर उधर नहीं जाएगा भक्ति, इसलिए श्रीमद् भागवत में स्वयं सुखदेव जी कहते हैं इसको इसी तरह से नहीं दे दीजिए, कृष्ण लीला चरित्र किया और इसके सुनने से संसार में जिनकी जिस वस्तु में आसक्ति है उसमें वो सभी वस्तुएं हैं, नाम रूप गुण लीला रूप रस गंध शब्द सभी का विषय वो कृष्ण हो सकते हैं और स्मृति, क्योंकि ये जगत के लोगों के अनुरूप है, ये अलग जो जो चाहते हैं जगत में वो सब के विषय कृष्ण हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं यश्यानन मकर जिनका बहुत ही सुंदर मुखार
वो और कैसे सुंदर लग रहा है, मकर कुंडल इधर से छूट है। मकर कुंडल, मकर मैंने क्या, मछली भी होती है और मकर माने होता है मगर, मगर भी और कहीं ये पिच्छू होती है उससे समान या अर्धचंद्र के समान
मुक्ता
अर्धचंद्र होकर के बीच में एक बिंदु का और उसके साथ में कुंडल बना, ये सभी मकर कुंडल का अंतर्गत। मकरी के आकार का होने से इसको भी मछली का आकार मकर के लिए अधिक प्रयोग किया, क्यों, मछली और मत्स्य में बड़ा प्रेम होता है, प्रेम की प्रतीक और वो कामदेव उनके ये भावनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए सुंदर जहां की सुंदर चीज होगा इसका ये दिया जाता है। इसलिए भगवान का भी पहला जो रूप हुआ वो मत्स्य सबसे पहला, वही सृष्टि का आदि कहलाता है। सज्जस्यानम मकर कुंडल चारु कर्ण ध्याज कपोलश, ये मुखारविंद तो सुंदर है ही है और दोनों कुंडल चमक रहे हैं, विशेष करके जब वो हिलते हैं, चाहे रोने के समय में हिले चाहे भागते समय में यशोदा जी खदेड़ रहे हैं पकड़ने के लिए और सब सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, नंग फड़ंग बच्चा छोटा केवल यहाँ पर वो क्या करते हैं खरगुनी पहना और उसको पहना करके छोटे बच्चे कृष्ण उसके लिए बतलाया गया नमामि ईश्वरम सचिदानंद लसत कुंडलम गोकुले, कितना सुंदर जो गोकुल को एकदम मता खा रहे हैं, कानों में सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा मत समझ लो कहते हैं इसी कि कुंडल की सुभा को बढ़ा देते हैं, बल्कि ऐसा समझो उन सोने के कुंडलों को निर्जीव को भी अत्यंत सुशोभित, इसकी छाया पड़ती है कुंडलों में कृष्ण के, इसके दंडस्थल की वो कैसा है श्याम वर्ण, उसमें कुछ लाल हुआ जब उसका उसका प्रभाव उस पर पड़ती है तो कंडक कुंडल बहुत ही सुंदर, वही कुंडल दूसरों के हों तो उसके सौंदर्य को वो बढ़ाएंगे, किंतु यहाँ पर नहीं, उसके सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, इसलिए भूषणम भूषणम भ्राजत कपोल सुभवन कविदास, उसमें भी कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कुछ सविलास हंस रहे हैं, विलासपूर्वक मैंने कहा आंखों को किसी भावभंगी से उसके कोने से उधर में देख करके विलास के साथ में हंस रहे हैं, स्वहासम आंखों का भी विलास होता है, हंसने का भी विलास होता है, कृष्ण तो उस तरह से हंसते हैं मानो जगत को एकदम सबको नारियो नराक्ष नर और नर इसी प्राणी मात्र में जितने भी हैं चाहे पशु हो मनुष्य हो जीव हो विशेष करके मनुष्य सबको आकर्षण करते नित्योत्सवम नर्तक त्रिपु, नेत्रों का मुखारविंद का उत्सव हो रहा है, उत्सव माने को जो देख उत्सव माने होता है किसी प्रसन्नता के लिए आनंद को उपभोग करने के लिए कोई उत्सव, यहाँ पर आंखों का उत्सव मुखों का उत्सव जिसके हृदय में देखने से ही आनंद बढ़ जाए उसको कहते हैं उत्सव, तो वो नित्य उत्सव वहां के जो ब्रज के रहने वाले हैं विशेषकर जगत के लिए था यह जगत में जब लीला प्रकट हुई, किंतु नित्य जगत में सब समय जितने भी नारियां और नर नृति उनको कभी भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए नंद भवन में जिस किसी कोई उपाय की रचना करके बहाना ढूंढ करके बूढ़े लोग भी आते हैं, बुढ़िया भी आ जाती हैं, प्रौढ़ भी आते हैं, नवज्योतियां भी आ जाती हैं, छोटी सी बालिकाएं और बालक भी, यहाँ तक कि तो बात क्या जो गाय और बकरे और सब ये लोग भी देखने के लिए कोई उलाहना देने के बहाने आती है, वो तो चाहती है ऐसा, कभी उलाहना देने के बहाने, कोई किसी के बहाने, कोई आशीर्वाद देने के बहाने वो पहुंच जाती है। क्यों? उनकी तृप्ति नहीं होती है उनके मुखारविंद के, उनके अंगों को देखने से। पिवंतो सब समय पान कर रहे हैं, गोदी में बैठा करके बच्चे के रूप में, या और जो गोपियां हैं किशोरी रूप में किशोर कृष्ण को देख करके आंखें तृप्त नहीं हो रही, तो भी सब समय देख रहे हैं, और जब देखती हैं कि आंखों में पलके हैं तो निमेश निमिष को कहते हैं, निमिष ऊपर से पलक देखती है, तो निमी माने निमी को बनाने वाले को अभिसंपात करते हैं। जैसे देखो ये धनुष आ रहा है, धनुष आ रहा है माने क्या, धनुष को जो धारण करने वाला है धनुष का मतलब क्या, धनुष छोड़े आएगा थे, इस प्रकार से ये नेमी को कहा है, नेमी माने होता पलक, तो पलक तो पलक है, इसलिए यहाँ पर पलक को बनाने वाले से तात्पर्य है। कुपिता पहले तो आंख पर बिगड़ी, क्यों आंखों में पलके हुई और एक ही आंख को, कोटी कोटी आंखें क्यों नहीं, चंद चैतन्य से तामस में इच्छा बन जाए, कृष्ण का रूप मानो ब्रह्मा की सृष्टि में जितना उनका सौंदर्य और कला का ज्ञान था सबको एकत्र करके ब्रह्मा जी ने इस रूप की रचना की, किंतु ये गड़बड़ी पर उन्होंने पलके बनाई, और पलके ऐसे बनाई कि बार बार देखते मछली की तरह, और पलक नित्र नहीं बने, मछली में के आंखों में पलक नहीं होता, तो वैसे हमारे इसलिए कभी भी तृप्त हो ये भी देखता है उसको तृप्त नहीं होती है कृष्ण के रूप से। सुबह कपोलहेरी मकर सुंदर सबिलास हास्य चंद्र निर्मल नर नारी नित्य उत्सव मापी निमेशकारी प्रतिकूपित हो गया, निमेशकारी जो ब्रह्मा है उनको अभी संपा देंगे, कैसा बनाए, यदि हमें सृष्टि करने का अवकाश होता, यदि हम सृष्टि करती तो हम देखला देती ब्रह्मा को, ब्रह्मा के अंग प्रतंगों में जितने रोए हैं उतने ही और बिना पलक की बना है। किसको होगा जिसको आशक्ति आएगी तब ये ऐसी अभी हम अपने अभी अभावों की पूर्ति में सारी क्लेशों को मानसिक क्लेशों को दूर करने में अभी हम लोग लगे, यही मूल चीज हमारी, और उस समय होगा कृष्ण चिंतन केवल होगा, यही अभाव जो कृष्ण का हम सब दर्शन करेंगे। जब धर्म सुनो वतराज सुए निरीक्ष्य दिन स्वस्तैनं त्रिलोक कात्मिन जाति हरतं विभातु अर्वाति तौ कौशलं नित्यम अन्नत। यहाँ पर कह रही हैं वहां पर ब्रह्मा जी को अभिशंपात कर रही हैं, अभिशाप दे रहे हैं इसको बनाएंगे, और यहाँ पर कह रही हैं जब धर्म सुनो, अर्थात धर्म सुनो मैंने धर्मराज, धर्मराज जी राशि यज्ञ किया और उस यज्ञ में समस्त देश विदेश के बड़े राजन्य वर्ग भीष्म पितामह इत्यादि और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि राज ऋषि लोग उसमें, यहाँ तक नारद इत्यादि जितने भी ऋषि थे और
जिधर में सुनक सुनंदन सनातन कवि हवि अंतरिक्ष इत्यादि बड़े बड़े ब्रह्मविद्कार ब्रह्मज्ञ और राजर्षि लोग वहां पर उपस्थित। राजर्षि और ब्रह्म ऋषि में क्या अंतर है? राजर्षि में मैं राजा था कुछ अभिमान करता है, ब्रह्मर्षि में यह भाव किसी ब्रह्मर्षि उनमें चेतनता का पूर्ण रूप से क्या। इनमें अभी सात्विक राजसिक तामिक भाव विशेष करके राजनीतिक भाव को चलाता है जैसे भी सुमित्री जी, किंतु पीछे से जब उनका सन हुआ वाल्मीकि वशिष्ठ इत्यादि तब उनका वो भाव हुआ, तब वो परमहर्षि हुए, किंतु फिर भी वो तो कुछ ग्रंथ रख गए। इसलिए कभी कभी अपनी श्रोता का स्मरण होता है जैसे वशिष्ठ इत्यादि नारद जी को भी ब्रह्मर्षि कर देव ऋषि कर ये जैसे कि राजा जनक के दरबार में गए थे यज्ञ बल के ये सब ब्रह्मर्षि है। ब्रह्मर्षि भी दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मवादी और दूसरे भक्तिवादी। नारद इत्यादि जो है व्यास जी हैं नारद जी हैं ये सब भक्ति मूलक प्रेम के ये ब्रह्मर्षि और दूसरे लोग हैं वो लोग ब्रह्मर्षि ज्ञान मार्ग ब्रह्मा उनके महाराज जी जी के तरफ दरबार में विराट मैदान में यज्ञ हुआ, बड़े बड़े सब लोग उपस्थित थे। उस समय में कृष्णचंद्र जी स्वयं सबके पैर धोने की साजिश इससे बात और दुर्योधन को बनाया गया कोष का अध्यक्ष दान करने वाला, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। कर्ण से और शकुन से परामर्श के बोले आज अच्छा समय मिला, हमको बनाया है इन्होंने दान देने वाला, आज से एक ही मिनट के अंदर में हम इतना दान कर देंगे राज्य कोष को सब खत्म कर देंगे एक मिनट के दूसरे समय के लिए, ऐसा समझ के वो दान करने लगा और जितना दान करता है उतना ही बढ़ता है। अंत में वो बेचारा पक्के नहीं इतना दान कर सकता, यहाँ तक कि लेने वाला कोई राह नहीं दिया सोना और ये सब। कृष्ण ने कहा कि मैं सबका पैर दूंगा और उस समय सब उनका पैर सबका पैर दे जो आ रहा है उसी का पैर दूंगा। उस समय कृष्ण का रूप कैसा था उसी को वर्णन करने में तो धर्म सुनो वत बहुवत बड़े आनंद के साथ आश्चर्य से कृष्ण का देखो तो राजसूय यज्ञ में निरीक्षित स्वस्थानं त्रिलोक त्रिलोक का स्वस्थ गाय अर्थात आनंददायक वो वहां कैसा था ये वर्णन से अधिक। त्रिलोक तीन लोक काष्णेन च अध्येह गतम विधातु अर्वाक सिष्टौ कौशलम इत्थम तीनों लोक के सभी लोग आनंद से भर गए मत हो गए। तीन लोगों में कौन वहां पर भर लो तीन जगह पूछने की लिए प्रकट हुई द्वारका मथुरा और ये तीन जहां भी कृष्ण गए हैं तीन लोगों में ब्रज में रहे हैं किशोर अवस्था तक युवावस्था में मथुरा है यहाँ कुछ दिन रह करके 10-5 वर्ष की 20 वर्ष खुद चले गए। यहाँ पर सब लोगों को अपने रूप से आकर्षित कर दिया ये तीन अथवा देवी धाम बैकुंठ धाम और गोलोकनाथ ये तीन उनके लिए यह है जड़ सृष्टि बैकुंठ है चित्त सृष्टि और वहां वाला है कृष्ण की नित्य लीलाओं का वो स्थान। तो बोलो मध्यम का हुआ बैकुंठ और किधर का हुआ ये तीन लोग भूर्भुवः स्वः कहने से भूर्भुवः स्वः में तीन लोगों में उनकी लीला प्रकट अधिकांश अच्छी तरह से नहीं होती। देवता लोग इन लीलाओं को देख करके भी नहीं देख पाते। कभी कभी वर्णन आता है कि उनकी स्त्रियां अपने पति के गोद में ही मूर्छित हो गई, कृष्ण का ये राष्ट्र। किंतु पतियों को नहीं दिख पड़ा, वो भक्ति मानती इसलिए कुछ कुछ देखते, उनका प्रेम देखा, नित्य देखा, उनका संगीत सुना, किंतु और कुछ नहीं देखा। और ब्रह्माचार्य वृद्ध लोग जो हैं, ब्रह्मा शंकर उनका स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा बाल्य लीला इत्यादि को ही दर्शन कर, राष्ट्र में कभी आने का कोई प्रसंग ही नहीं। इसलिए कहते हैं ये तीनों लोक में वही तीन, और नहीं तो जहां जहां इनकी लीला प्रकट हो रही है उसके लिए सभी लोग देख करके स्वस्थ होता है, सुख और शांति, स्वस्थ। स्वस्थ है मैंने स्वस्थ चिन्ह होता है ना, तो स्वस्थ किसको कहते हैं, सुख किसको कहते हैं। आनंद से यह सुख हुआ, आनंद होता है प्रेम में, प्रेम की पराकाष्ठा है कृष्ण की लीला में, कृष्ण से प्रेम। प्रेम एक ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मैंने हाँ बात है कोई चीज है, और एक होता है स्वस्थता है ना शांति, ये निगेटिव चीज है। निगेटिव भी मैंने नकारात्मक चीज, कोई चीज नहीं है। जैसे रात में हम लोग शांति के साथ में मैं सोया, सुख से सोया, शांति से कर, अर्थात कोई भी कष्ट इत्यादि हमें प्रतीत नहीं, बड़े सुख से ये